अब इसके बाद यहाँ देखिएगा आयत नंबर 49 से हिस्ट्री के कुछ पेजेस हैं, आप इसके ऊपर लिख लें। मुझे तो ये आयतें पढ़ते साथ ऐसे लगता है कि एक एल्बम है और मैं उसको खोल रही हूँ। अच्छा यहाँ भी गए थे, अच्छा यहाँ गए थे, ये पहाड़ों की तस्वीरें। यानी जब जिंदगी की कुछ मेमोरीज एक एल्बम में जमा होती है तो कभी कभी आप उसको खोलते हैं तो हो सकता है 10 साल का सफर आप 15 मिनट में तय कर लें। यहाँ ऐसे ही होगा, है ये बनी इसराइल की 40 ईयर्स की हिस्ट्री, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि 3-4 सफ़ों में आप इसको पढ़ लेंगे। और यही ग्रिम्स जो है ना, ये पूरे कुरान में डिटेल से आएंगे। सूरत बकरा में बनी इसराइल की हिस्ट्री कंसाइज करके बताई गई है। पूरा कुरान बाद में इसको मुख्तलिफ तरीके से खोलता है। तो यहाँ बनी इसराइल की हिस्ट्री में अल्लाह ताला ने इनको एक एहसास दिलाया कि देखो कल तक तुम गुलाम थे, आप इसको अपनी उम्मत मुस्लिमों के साथ रखें, हर दौर के मुसलमान। अब चूंकि हम पाकिस्तानी इंडियन है तो हम तो उर्दू से और अपनी हिस्ट्री को ज्यादा जानते हैं, लेकिन इसके बरक्स जो दूसरे अरब कल्चर्स में और दूसरे उनमें से हर एक है, आप देखेंगे कि हर मुस्लिम मुल्क की हिस्ट्री में कहीं ना कहीं गुलामी आई है। जैसे हम पाकिस्तान और इंडिया वाले रहने ले देख ले तो 1947 और 48 से पहले हम लोग इकट्ठे भी थे और हम अंग्रेज की गुलामी में थे, वहां सब एक साथ थे और सब तड़पते थे कि किसी तरह अल्लाह ताला हमें अपनी जमीन के टुकड़े दे दे और हम वहाँ इस्लाम नाफिज करें। यही हालात बनी इसराइल के थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल मुल्क शाम से निकलकर मिस्र में आए थे। आपके लिए ये टू मच है, डोंट थिंक अबाउट दैट, सोचते हैं ये आपके लिए नहीं है। कभी फिर जब आप इंशाल्लाह रमजान के बाद तफसीर वाला कोर्स करेंगे, फिर अगले साल दौरे कुरान में ये बातें सुनेंगे तो आप कहेंगे हाँ हमें तो ये इन्होंने कम बताया। लेकिन सिर्फ ये बात बताना इसलिए चाहती हूँ कि जब तक कुरान को उसके टेक्स्ट के साथ नहीं रखेंगे बात समझ नहीं आती। तो जिस तरह हम मुसलमान एक वक्त में अंग्रेज की गुलामी में थे और हम दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह ताला हमें हमारी जमीन का एक अलग टुकड़ा दे जहां हम इस्लाम को नाफिज करें, सेम यही कैफियत बनी इसराइल की फिरौन के दौर में थी। फैरो उस दौर का कह लीजिए कि तागूत था या काफिर था या बादशाह था, उसने बनी इसराइल को गुलाम बनाया था। अब बनी इसराइल चूंके उस दौर के मुसलमान थे और वो चाहते थे कि हम अपने दीन पे अमल करें, तो इन्होंने दुआएं मांगी, अल्लाह किसी को भेज, अल्लाह कोई हालात पैदा कर। अल्लाह सुबहान तआला ने इनकी दुआएं सुनी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने भेजा तो उनको दो बड़े बड़े गोल दे के भेजा। नंबर एक के पहले तो इस बनी इसराइल को आजाद करवाएं, गुलामी में तो कुछ कर नहीं सकते, और दूसरा मकसद ये था कि आप जब इनको आजाद करवा ले तो फिर इसके बाद आपको तौरात दी जाएगी और उस किताब के मुताबिक इस कौम की आप हिदायत का सामान बन जाए। सिंपल बात है। अल्लाह सुबहान तआला के इस वादे के मुताबिक ये दोनों काम हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम को नबुवत मिली, कैसे मिली, कब मिली, वो आगे तफसीलात खुद ही आएंगी, लेकिन वो आए, उन्होंने फिरौन और उसके सारे फॉलोअर्स को पहले हिदायत की दावत दी, फिर उनको मोजज़ात दिखाए, यद बैसा और इसी तरह से दूसरी चीज़ें, लेकिन उनको नहीं मानना था, वो नहीं माने। जिन लोगों के दिल में ईमान था थोड़े थोड़े करके वो इस्लाम पे आ गए, जिसमें हजरत आसिया भी थी जो फिरौन की बीवी थी, उनका जिक्र हम 28 पारे में पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि बनी इसराइल आजाद हो गए, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मिरेकल इनके लिए किया कि समंदर के अंदर रास्ता बन दिया, और अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, माँ के पेट में भी तो रास्ता बनाता है तो बच्चा बाहर आ जाता है ना दुनिया में, तो अल्लाह समंदरों में बना ले। हजरत सालेह की ऊँटनी को अल्लाह ने पहाड़ फाड़ के निकाल दिया था, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अब बनी इसराइल ने अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखा, इनका जिसको आप कह लीजिए कि जो इनके लिए बुत था इनका, या एक इनके सर पे सवार था फिरौन, वो इनकी आंखों के सामने डूब गया। इसका जिक्र है इधर, वइस नज्जैनाकुम मिन आलि फिरौन यसूमूनकुम सू अल अज़ाब, और याद करो वो वक्त जबकि हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से निजात दी, उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुबतला कर रखा था, तुम्हारे लड़कों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। गुलामी में कौमों के ऊपर जुल्म होते हैं, फिरौन के जुल्म की मिसाल अजीब थी। आप कह लें कि उस दौर के मुस्लिम के बेटों को मरवा देता था, क्यों मरवाता था, कोई कहता उसने ख्वाब देखा हुआ था, कोई कहता है कि फैमिली प्लानिंग का हिस्सा था, कुछ भी हो, लेकिन याद रखिए यहाँ एक बहुत गहरा नुक्ता है। पिछली कौमें जो कि कौमें समूद और सवाले जो बाकी गुजरी, पूरी की पूरी कौमें अल्लाह के अजाब से मारी गई। ये एक नया नुक्ता होगा जो लोग पिछले सालों में भी सुनते हैं उनके लिए तो वो नोट कर सकते हैं। पिछली कौमों पे एक अमूमी अजाब आया, कौम नूह तूफान में डूब गई, इसी तरह किसी कौम पे जलजला आ गया, किसी पे कुछ हो गया, खत्म हो गई बात। बनी इसराइल पर जो अजाब आया था ना, ये सिर्फ इनके मर्दों को मारा गया। फिरौन ये भी तो कर सकता था, एक कत्ले आम कर देता, औरत भी मारी जाए, मर्द भी मारा जाए, लेकिन फिरौन ने भी उनकी औरतों को जिंदा रखा। क्यों? कि अभी इस नस्ल की रिवाइवल चाहिए थी। यहां से मेरे और आपके लिए एक सबक है कि सिर्फ किसी सोसाइटी की औरतें अगर जिंदा हो जाएं, बाशऊर हो जाए। जिंदगी दो तरह की होती है, एक जहनी जिंदगी और एक जिस्मानी जिंदगी। जहनी तौर पे जिंदा औरतें कब होती हैं? जब इस किताब से जुड़ती हैं, जब उनको अल्लाह की मर्जी समझ आती है। तो जिस कौम की औरतों के अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि हमने एक चेंज लानी है, हमने एक ऐसी नस्ल पैदा करनी है, तो आप देखिए कि अल्लाह उस कौम को उठाता है। बनी इसराइल के साथ ये हुआ था। इसके आगे अब जब आते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनरेशन, तो आप देखते हैं कि इसमें तो चंद ही लोग मारे गए। अल्लाह का कानून है, वो कौमों के साथ मामले मुख्तलिफ तरह से हालात के मुताबिक करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक सजा थी। आप खुद सोचिए, पैदाइश के वक्त माँ को शक पड़ जाए या क्या होगा कि बेटा पैदा होगा, तो फिर तो ठीक है, बेटी हुई तो उसको मार दिया जाएगा। कितना तकलीफ का मंजर होगा। और फिर हर साल का नहीं, एक साल का बेटा मार रहे हैं, एक साल का नहीं मार रहे। ये आजमाइशें आज भी जहां मुसलमान मारे जा रहे हैं, जहां मुसलमानों के बच्चे ज़िबा हो रहे हैं। दुश्मनों को मत देखें, देखिए दुश्मन सिर्फ मोहरा है, पीछे हाथ अल्लाह का। अपने दौर में अल्लाह ने फिरौन से जो काम लिया, आज अल्लाह वो कभी किसी मुल्क में ले रहा है। नामों की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं। आज मुसलमानों के बच्चे मारे और जलाए और ज़िबा किए जा रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। अल्लाह कहते हैं कि ये आजमाइश किसकी तरफ से थी? बलाओं में रब्बी को मजीद। इस आयत में सब ये हाईलाइट कर लें, बलाओं में रब्बी को मजीद। जब मुसलमानों को दुश्मन कौमें मारती हैं, तो ये असल में अल्लाह की आजमाइश होती है। हमारा हाल क्या है कि हम उन दुश्मनों से उलझने लगते हैं और अपनी इसलाह नहीं करते। कोई मारे, मार सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ने हाथ पकड़े थे उनके, आज भी पकड़ सकता है, क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि आज वो ईमान नहीं है। तो लिहाजा दुश्मनों को बुरा कहने से ज्यादा अपनी इसलाह की फिक्र करनी चाहिए। वही फरक ना बिकुमुल बहरा फन जई ना कुम रखना आला फिरौन न बन तुम तंजुरून। याद करो वो वक्त जबकि हमने समंदर को फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर इसमें से तुम्हें बखैरियत गुजरवा दिया, फिर वही तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को डुबो दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिरौनी डूब गए, इतना बड़ा मोजज़ा हो गया, अल्लाह ने फिरौन के जिस्म को बचा लिया। अब चाहिए क्या था कि बनी इसराइल जो आज़ाद हो गई है, क्या करना चाहिए अब उनको? अब उनको उनका वतन मिलना है ना। अब इमेजिन कीजिए कि वो मिस्र में फिरौन डूब गया। अपनी जुबान में सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि अंग्रेज चला गया, तो अब क्या करना चाहिए था? मुस्लिम्स को अपना दीन बनाना है। आपको मुझे पाकिस्तान का एक टुकड़ा मिल गया, आपको इंडिया में आज़ादी मिल गई, आप अपने हिसाब से करें, आप अपने से करें। कितना सिंपल था। अब वो वक्त हो गया था कि जब इनको अपनी बात करनी थी, लेकिन इस कौम के अंदर गुलामों में रहकर गुलामाना जहन पैदा हो गया था। एक शेर भी है ना कि बदल जाता है गुलामी में कौमों का जमीर। गुलामी अच्छी नहीं होती, आजाद इंसान अच्छा होता है। अब जब फिरौन तो खत्म हो गया, आप कह लीजिए कि एक मतलब खुदा जो फिरौन की सूरत में इनके सर पे मुसल्लत था, उसकी गुलामी से निकले और उससे बदतर खुदा के हाथ में आ गए। और वो क्या था? इनका नफ्स। चाहिए ये था कि बस चले, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को तौरात देनी थी जिससे इनकी गाइडलाइन थी, तो इनको मानना था, लेकिन ये ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम के जरिए इनको वादिय तीह, जो एक डेजर्ट है, बिल्कुल बैरन लैंड्स है वहां की, वहां डाल दिया। 40 ईयर्स तक वहां रहे। करना क्या था कि जाके मुल्क शाम में कौमे मालका के साथ जिहाद करते और वो उधर से निकल जाते, इनको इनका पीसफुल लैंड मिल जाता। लेकिन सुस्त हो गए थे इतने आजी से। फिरौन तो इनसे मार कूट के काम करवा लेता था, बड़े बड़े जहाज चलवाता, बिल्डिंगें बनवाता, देगे पकवाता, गुलामी में कर लेते थे। जब आजाद हुए तो सब्र नहीं कर सके। याद रखिए, सब्र दो तरह का होता है, एक मुसीबतों पे सब्र और एक नेमतों का सब्र। हम अमूमन सोचते हैं कि मुसीबतों, बीमारियों, दुखों का सब्र मुश्किल है, हालांकि अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो उस वो सब्र तो सब कर ही लेते हैं। मौत वाले घर में देखिए, लोग इन्ना लिल्ला पढ़ रहे होते हैं, तस्बीहां पढ़ रहे होते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सेग्रीगेटेड माहौल है, कोई वहां नाफरमानी नहीं है। सबसे मुश्किल सब्र नेमतों और खुशियों का सब्र है। शादी नेमत है ना, आपके बच्चे की, आपके घर में किसी की, ऐसे वक्तों में बंदा फिसल जाता है। ये सबक है हमारे लिए कि जब गुलाम थे तो अल्लाह से जुड़े हुए थे, अल्लाह ने इतनी मदद की, दरिया में रास्ता बना दिया, और जब आजाद हुए तो अब नमाजें भी छोड़ दी। आज हमारा क्या हाल है? कितने साल हो गए आजाद हुए हम सबको? 47 से काउंट करके देख लीजिए, या 48 से कर लीजिए, आप जहां से मर्जी करके देख लीजिए, कितने साल हो गए। क्या हम वो कर चुके जिसके लिए हमने अपने मुल्क लिए थे? पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत वहां बनी? आप इस वक्त जमीन के खितों की बात ना करें कि अच्छा पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं। ورلڈ وائڈ ہم سب مسلم اس وقت ایک ہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں جا کر تنہائی میں فوکسڈ ہو کر اللہ کی کتاب اخذ کی. پیچھے سے قوم نے کیا کیا, آئیے سنتے ہیں. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شب و روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم اب شکر گزار بنو. یہ نوٹ کرنے کا نقطہ ہے, شکر گزار بنو. کئی دفعہ انسان حادثات سے بچ جاتا ہے, انسان کئی دفعہ بیماریوں سے زندہ اٹھایا جاتا ہے, کیونکہ اب اگلی زندگی اللہ کی شکر گزاری کی کرو. لیکن عام طور پہ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو صحت مل جاتی ہے تو وہ سب وعدے خود سے کیے ہوئے بھول جاتے ہیں. وہ ساری جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہوتی ہیں, اچھا اللہ اگر ایک دفعہ تو نے یہ کام کر دیا اب میں بہت اچھی بنوں گی. جیسے ہر سال رمضان میں ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں, پھر بعد میں بدلتے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں, اللہ بس رمضان آ جائے, میں نے اس سال تو بدل ہی جانا ہے. لیکن رمضان کے بعد آہستہ آہستہ پھر میلا ہونے لگتا ہے نام اعمال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادھر ایک دفعہ پھر رمضان میں لا رہا ہے, کیوں, لعلکم تشکرون. تو یہاں نیت کرتے ہیں, اور شکر کیا ہوتا ہے, اللہ کی مرضی کا بننا, نعمت دینے والے کو خوش کرنا. دل سے شکر, زبان سے اور عمل سے. جب انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں گرین کلر سے. یہ ہے وہ خوبصورت آیت کہ جو کسی بھی کتاب کے نزول کا مقصد سمجھاتی ہے. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو, ہائی لائٹ کر کے ذرا سے اس پہ 3 سیکنڈ تک غور کیجئے اور خود سے پوچھئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب سے ہدایت لو, آج ہم مسلمان قرآن سے کیا لے رہے ہیں؟ چند سوال خود سے لکھئے تدبر کے لیے. کیا میں نے قرآن کو کتاب ہدایت بنایا یا کتاب برکت؟ کیا آج میری زندگی کے فیصلے اس کتاب کی روشنی میں ہوتے ہیں؟ کیا کتاب کو میں نے اپنا نیویگیٹر بنا؟ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کو ہدایت کی کتاب سے زیادہ کچھ اور چیزوں کی کتاب بنا لیا. اللہ تعالیٰ پھر سبق یاد دلاتا ہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. اے بنی اسرائیل, یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا. یہ بچھڑا کہاں سے آ گیا؟ یہ سمبل ہے یہاں دنیا کی محبت کا. ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی بچھڑا ہوتا ہے, حب دنیا, ورلڈلی تھنگس, مٹیریلسٹک. ہر دور میں کچھ ہے, جیسے آج کے دور میں سائنس کو بچھڑا بنا لیا, کبھی ایجوکیشن کو بنا لیا, کبھی دنیا کو بہت خوب سے خوب اچھا کرنے کو بچھڑا بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے طور پہ اور پیچھے سے قوم نے بچھڑا بنایا. اللہ نے اس پہ تنقید کر کے فرمایا, تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا, بس تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اسی میں تمہارے خالق کے نصیب تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر ڈالی اور وہ بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا پتا چلا کہ اس دور میں توبہ کا طریقہ زیادہ مشکل تھا, ان کو خود کو مارنا پڑا. آج میرے اور آپ کے لیے امت مسلمہ کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ الندم التوبہ, دو لفظ ہیں, ندامت توبہ. جب آپ اپنی پچھلی زندگی میں کیے ہوئے کاموں پہ شرمسار ہو گئے اور آئندہ سے آپ نے نیت کر لی کہ میں نے اب یہ کام دہرانا نہیں ہے, تو اللہ کی نظروں میں آپ ایک تائبہ ہیں اور آپ کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا, تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو زندہ کر کے اٹھایا, شاید کس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. آپ نوٹ کریں اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. کبھی آپ نے کسی مردے کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا. بنی اسرائیلیوں کے اندر اللہ نے یہ واقعہ بھی کر کے دکھا دیا کہ ان کے علماء جو موسیٰ کے ساتھ گئے کوہ طور پہ, وہاں جا کے بڑی بڑی باتیں کرنے لگے. देखिए, जब किसी का मानने को दिल नहीं करता ना, तो बहाने बनाता है। जब हिदायत की तड़प नहीं होती ना, तो लोग फिर इसी तरह की बातें करते हैं। फिर सिंपल सी बात है, तुम्हें किताब मिल गई, अमल कर लो। ये किताब को देखने की बजाय किताब लाने वाले को देखने लग गए। आज ऐसे ही है, जैसे आप देखिए कि अगर आपको वेट है कि आपकी टेलीफोन की सिम जो है वो मेल में आएगी, आपकी नजरें किस पे होनी चाहिए? सिम आई कि नहीं आई? आप ये चेक करेंगे कि मेलमैन कैसा था, वो गोरा था कि काला था, कंपनी कौन सी थी, किधर से, हु केयर्स। जिनको हिदायत चाहिए होती है ना, बस जब किताब उनकी जिंदगी में खुलती है ना, तो छम छम रोते हैं, बस आज मिल गया वो रास्ता। ये थी वो चीज जिसके लिए मैं परेशान थी। और मैं आप सबको फिर कहूंगी कि आप में से जो पहली दफा सुन रहे हैं, आपको ये साल कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये साल आपको आपके रब से मिला रहा है। मुलाकात होती है जब आप कुरान पढ़ते हैं, असल पता ही अल्लाह का तब चलता है। अब जब पता चल जाता है, तो इंसान को फिर सोकर रोना आता है। और जब एक इंसान अल्लाह के इस एहसान के बाद इसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर अपनी जिंदगी को कहाँ से शुरू करता है? उस दिन से शुरू करता है जिस दिन से हिदायत मिलती है। बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं ना। आप देखिए, डेट ऑफ बर्थ हुई, 10 साल तक तो आपको इतना शौर ही नहीं था, बेवकूफियों की जिंदगी गुजरी, क्या किया, जाया हो जाता है इंसान। 10 साल के बाद दुनिया के कैरियर में खो गए, 20 साल तक होश ही नहीं आता। पिछले 20 साल आपकी जिंदगी के कुछ नहीं थे। असल जिंदगी शुरू होती है जब हिदायत की किताब खुलती है। और अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि दिल चाहता है कि अपनी जिंदगी से वो साल निकाल दें जो इस किताब को किताब हिदायत बनाने से पहले के थे, क्योंकि शर्मिंदगी होती है, रोना आता है। कई लोग कहते हैं, हाय हमें कभी जल्दी ये पैगाम मिल चुका होता, हाय हमें 70 साल की उम्र में, 60 की, 50 की, 40 की, 30 साल की उम्र में मिला। मैं कहती हूँ, जिसको मिल गया वो शुक्र मनाए। और आप में से इस वक्त जो भी जहां से सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता पीछे आप और कहाँ से कौन किसकी क्या एज है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप में से जो इस वक्त सबसे छोटी उम्र की है, वो सबसे खुशकिस्मत है। कोई टीन अगर बैठी है, हर एक अपनी उम्र लिख के देखे, घर से सुन रहे हैं या इधर सुन रहे हैं, अगर आपकी उम्र अभी कम है, तो आपके पास एक लॉन्ग जर्नी टू गो अहेड है। आपके पास अब इस किताब की गाइडलाइन में जिंदगी गुजरनी है। अमूमन देखा क्या जाता है कि हम सोचते हैं कि ये किताब तो खुलेगी बुढ़ापे में, जब सब कुछ करते हैं और कुरान पढ़ते हैं, तो सिर्फ रोना आता है, गिल्ट, पिछली जिंदगी के गुनाह, हाय क्या करते थे, फिर रोते हैं, फिर नदामत है। उनके लिए भी शुक्र है, उनके लिए इसलिए ऐसे अच्छी है कि चलो मर्जी की अपनी जिंदगी भी गुजार ली, अब अल्लाह ने तौबा का मौका दिया। बहुत सारे बच्चे आपको ताना देंगे जब आप उनको टोकेंगे कुछ करने पे, अम्मी आपने खुद तो कर लिया, अब हमें रोक रहे हैं, क्योंकि बेटा रो के बता रही हूँ कि मुझे अब पता चला, बेटा मुझे पहले नहीं पता था, अल्लाह ने मेरी आंखें अब खोली हैं। तो याद रखिए कि हिदायत को जितना डिले करेंगे, गाइडेंस डिलेड, गाइडेंस डिनाइड, जब हिदायत को पीछे करेंगे तो परेशान होंगे बाद में। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे जवानों के कदम इस किताब की तरफ इस तरह से लगे कि बस उनको और कोई पीछे ना करे। और यकीन करें, जो जवानी में किताब पढ़ के जोश जज्बे आते हैं, वो शायद फिर बड़ी उम्र में आने के बाद कम हो जाते हैं, खत्म तो नहीं होते अल्लाह की रहमत से, लेकिन कम जरूर हो जाते हैं, क्योंकि बड़े होते होते इंसान कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं, उम्र के साथ रिस्क नहीं ले सकते। यूथ में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, वो डरते नहीं है, वो गुनाह भी करते हुए नहीं डरते ना, तो वो नेकियां करते हुए भी नहीं डरते। हमारा अमूमन मिजाज क्या होता है कि वक्त के साथ नेकियां करते हुए भी डरते हैं, हाय फलां कोई देखेगा, वहां नमाज पढ़ूंगी तो क्या होगा, यहां नमाज पढ़ूंगी तो क्या होगा, लेकिन यूथ ने जो करना होता है वो करती है। तो आइए हम सब दुआ करते हैं अपनी यूथ के लिए, दिल के दर्द से दुआ कीजिए इस वक्त, 3 सेकंड लिए अपने दिल में जिसकी भी दुआ करनी है, लेकिन मैं तो उम्मत की दुआ करूंगी, क्योंकि हम सब उम्मत मुस्लिमा बन के जीना चाहते हैं। जिस दिन हमारी यूथ के हाथ में ये किताब उस तरह आ गई जैसे अल्लाह के नबी ने थमाई थी, तो फिर चंद साल उंगलियों पे गिन लीजिए, दुनिया का नक्शा कुछ और होगा। यानी नबी सल्लम के जरिए से जिनको गाइडेंस मिली थी, आपको पता है कि वो यूथ थी। सिर्फ एक शख्स नबी सल्लम की जिंदगी में ऐसे थे जो उम्र में आपसे बड़े थे, और वो अबू बकर सिद्दीक थे, 2 साल सिर्फ। बाकी जितने लोग नबी सल्लम के हाथ पे मुस्लिम हुए, वो सब यूथ थे। उनके बाप नहीं माने, इकरमा मान गए, अबू जहल नहीं माने, आप सोच सकते हैं, अब्दुल्ला मान गया लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई नहीं माने, वलीद बिन मुगीरा नहीं माना, खालिद बिन वलीद मान गए। वो लोग जो नबी के दुश्मन थे, अल्लाह ने उनकी औलादों को नबी के मुहाफिज बना दिया। तो ये इस्लाम का मिजाज है, इस वक्त हमें अपनी यूथ को आगे लाना है। उनका मोरल बुलंद कर। अगर आप खुद जंग है तो मुबारक हो आपको, खुशी आपके लिए, आपकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। और अगर आप में से, मेरे में से कोई यूथ से ऊपर चला गया तो डोंट वरी, आप अपने घरों में अपने बच्चों, आपके बच्चे नहीं है तो बच्चों के, औरों के, औरों के, आप उनको जाके मुबारक दें कि बेटा आप, मैं तुम्हें साथ लेके चलूंगी। मुझे तो रोना आता है, मेरी तो आंखें भीग जाती हैं जब मैं हालात ये देखती हूँ कि आज हमारी यूथ तो एक अलग दुनिया में जी रही है, और बड़े अलग है। एक घर में रहते हुए लोग नहीं मिलते, एक गाड़ी में जाना पसंद नहीं करते, एक जैसी एक्टिविटीज नजर नहीं आती। उनके अपने वक्त, आपके अपने काम, आपके अपने गेस्ट, आपके अपने गेस्ट, आपके गेस्ट को बच्चे ना देखें, बच्चों के दोस्त आपको ना मिलें कि आप उनकी बात नहीं समझे, तो बताइए ये कोई उम्मत है? इतने टूटे हुए मोती हैं, उससे लड़ी कब बनेगी? सबको साथ लेकर चलें। तो आप सबको ये मैसेज है, अपने बच्चों को साथ लेकर चलें। और हिदायत का सफर बड़ा खूबसूरत हो जाता है जब घर वाले और इर्द गिर्द वाले साथ होते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, और ये उम्मते मुस्लिमा का टर्निंग पॉइंट होगा जब हम अपने बच्चों को अपना समझते हुए और उनके साथ उनकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हुए लेके चलते हैं, तो फिर देखिए उनको कितना अच्छा लगता है। आप कहनी, बेटा तुम घर सोती रहो, मैं जा रही हूँ दौरा कुरान पे सारा सुनने, तो बात तो वही हो गई कि जिसने ड्राइव करना था उम्मते मुस्लिमा को, ड्राइवर को तो आपने सुला दिया। तो आप जो पिछली सीट पे बैठ के सफर करने वालों में अब हैं, तो आप कहाँ तक लेके चलेंगे? उम्मत की हालत तब बदलती है जब यूथ बदलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके असरात शुरू हो चुके हैं। और कुरान एक ऐसी खूबसूरत चीज है। आप कहते हैं कि उर्दू है समझ नहीं आती, हाउ इज इट पॉसिबल नहीं समझ आती? हिदायत की कोई जुबान नहीं होती, मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती, आपके बच्चों को सब समझ आता है। ये जहन से जुमला निकाल दें, और अगर आप में कोई यूथ सुन रही है, यंग बच्चियों में कोई सुन रहा है, तो दिल से ये निकाल दीजिए कि आपको ये नहीं समझ आएगा। ये तो गूंगों की भी किताब है, गूंगों को हिदायत नहीं मिलती? आपने कभी नाबीना कारी नहीं देखे, हाफ़िज़े कुरान नहीं देखे? क्या हमें उर्दू नहीं आती? माँ की डांट खा के देखें कितनी अच्छी समझ आती है, जरा आप उनकी को बुराई तो करके देखें, फिर देखें कितनी समझ आती है। ये सिर्फ शैतान का एक शोषा है। मैं फिर यहाँ माओ को बात करके आगे चलती हूँ, क्योंकि ये दर्द भी, और ये हमारी उम्मत का इस वक्त का इश्यू है। हर मुल्क में जाके देखें, इस वक्त यूथ कटी हुई है औलाद माँ बाप से, और उसमें बिग बैरियर जुबान है। जो बच्चे अपनी माँ की जुबान नहीं समझेंगे, वो उसके जज्बात कहाँ समझेंगे? लैंग्वेज लोगों को जोड़ती है, ये ब्रिज होते हैं। लैंग्वेज से काट कर आपने पीछे किया, हमने तो अरबी से जोड़ना था, हमने उर्दू से भी काट दिया जो अरबी की बहन है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अपनी गलतियों का इजाला करने की तौफीक दे, और उर्दू सीखें, नहीं आती तो सीखें। जिसको उर्दू आ जाएगी उसके लिए अरबी सीखनी बहुत आसान होगी, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ उर्दू और अरबी या इंग्लिश का इशू नहीं है। इशू ये है कि हम सबकी एक सोच होनी चाहिए। जब सबकी मंजिल एक है तो गाड़ियों का रुख भी तो एक ही तरफ होगा। ये बिखरे बिखरे अपना मुंह उठाकर इधर उधर जाने वाले इंसान, ये हमारी जिंदगियों में खुशी नहीं लाएंगे, बल्कि और ज्यादा तकलीफें आएंगी इसमें।